अध्याय 19 ताम्र निधियां। पुरातात्विक उत्खनन में प्रायः ताम्र निधियों के साथ गेरू रंग के मृदभांडों का भंडार मिला है। इस प्रकार इन दोनों का सहसंबंध ज्ञात होता है। इनके साथ मिलने से दोनों का अध्ययन एक साथ करना ही उचित है, पर मृदभांडों का अध्ययन आगे किया गया है, वहीं उसी क्रम में गेरू मृदभांडों का भी अध्ययन किया जाएगा। ताम्र निधियां या ताम्र उपकरणों का भंडारण मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा कर्नाटक से अभी तक प्राप्त हो सका है। इनमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लगभग 40 भंडार मिले हैं, जबकि बिहार, जहाँ से 19 भंडार केंद्र मिले हैं, को छोड़कर अन्य राज्यों में 1 से 8 तक मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 424 ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश गुंगेरिया नामक स्थान से मिले हैं। ये अचानक ही प्राप्त हुए हैं। ताम्र निधियों से निम्न प्रकार के ताम्र उपकरण मिले हैं। प्रथम, कुल्हाड़ियाँ। ये 3 प्रकार की मिली हैं, चौड़ी, स्कंधित तथा क्षण वाली। प्रथम प्रकार की जो चौड़ी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, इनमें इनका जो कार्यांग है, जो धार वाला हिस्सा है, ये मुड़ा है तथा ये एक ओर चौड़ी तथा दूसरी ओर मुड़ी हैं। ये प्रचुर मात्रा में विभिन्न केंद्रों में से पाई गई हैं। इनका प्रयोग जंगल साफ करने में होता होगा। इनका निर्माण खुले सांचे में हुआ है। दूसरी जो स्कंधित कुल्हाड़ियाँ हैं, यह इनका जो कार्यांग है, इनकी जो चौड़ाई है अधिक है, ये लकड़ी काटने के काम आती होंगी। जो तीसरी क्षण वाली कुल्हाड़ी है, आज की खंती की तरह है। इनके ऊपरी किनारों को रगड़कर इनकी धार बनाई गई है। कहीं कहीं आरी की तरह इनमें दांता भी बना है। यह ऐसे ही प्रस्तर उपकरणों के अनुकरण पर बने हैं। ये लंबी हैं तथा किनारे कलात्मक हैं। इन पर कुछ चिन्ह बना है, जिनके आधार पर स्मिथ का मानना है कि ये सोने और चांदी के छल्ले की तरह मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती होंगी। जो दूसरा ताम्र उपकरण है वह छल्ला। ये मोटे एवं भारी हैं, जो मोटे चादर के बने हैं। हथौड़े के प्रहार से इन्हें इच्छित आकार दिया गया है। कोई कोई दोहरे सांचे में बने होने से दोहरे छल्ले से बने हैं। इनको बीच बीच में मजबूती के लिए जोड़ा गया है। रीवा के पौंडी से ऐसे 37 छल्ले मिले हैं। यह भी संभव है उनका प्रयोग बटखरे के रूप में होता हो। इनमें कुछ कलात्मक हैं किंतु बहुत सादे हैं। जो तीसरा ताम्र उपकरण है वह मत्स्य भाला। मत्स्य भाला तांबे का होता था। तांबे के भाले यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो मोटे चादर को काटकर बनाए गए हैं। उस कटे टुकड़े को हथौड़े से पीटकर इच्छित आकार प्रदान किया जाता था। ये लंबोतर हैं तथा इनके बीच का भाग मजबूती के लिए अधिक मोटा है। इनके बीच में अंकुश निकले हैं। कुछ के नोक सीधे हैं और कुछ के अंदर की ओर मुड़े हैं। ये 2 प्रकार के पाए गए हैं। प्रथम प्रकार में ऊपरी भाग नुकीला, लंबा और रीढ़दार है, जबकि दूसरे प्रकार के बीच में 2 से 4 जोड़ी दांते हैं। इनमें एक और छेद भी बना है। जो चौथा उपकरण है ताम्र उपकरण ताम्र निधियों का, उसमें दोहरी कुल्हाड़ी है। यह बहुत कम प्राप्त हुई है। अभी तक केवल उड़ीसा से 3 ऐसे उपकरण प्राप्त होने की रिपोर्ट है। ये लंबे और भारी हैं। 40 सेंटीमीटर तक इनकी चौड़ाई है। इनके किनारे भी 1 से 3 सेंटीमीटर तक मोटे हैं। इसमें संदेह है कि ये कुल्हाड़ी की तरह प्रयोग में लाए भी जाते थे। पश्चिमी एशिया में इस प्रकार की जो कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, वे पूजा के काम आती थीं। जो 5वां ताम्र उपकरण है, उसमें श्रृंगदार मुठ की तलवार है। ये तलवार लंबे और मोटे पत्थर की है, जिनका किनारा पतला है तथा बीच का पृष्ठ भाग उठा है। इसके ऊपरी भाग पर 2 सिंगों के आकार का मुठ निकास दिखता है। इसी से इसे श्रृंगदार मुठ की तलवार नाम दिया गया है। मुठ के अंतिम ऊपरी छोर पर दोनों ओर निकले हैं, जो समतल न होकर कुछ ऊपर की ओर उठे हैं। ये पकड़ने में असुविधाजनक रहे होंगे। इसी से शंका होती है कि युद्ध क्षेत्र में इनका प्रयोग होता भी था अथवा नहीं। जो 6वां उपकरण है, पूर्ण मानवाकृति। मनुष्य की तरह दिखने वाले इस उपकरण में सिर, गर्दन रहित चपटे, कंधे से निकली अंदर की ओर मुड़ी भुजाएं, छोटा किंतु बाह्य धड़ और फैले लंबे बिना मोड़ के टखने रहित पैर हैं। इसका आकार 20 से 47 सेंटीमीटर लंबा और 30 से 43 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसको तांबे के चद्दर को इस आकृति में काट कर बनाया गया है। हथौड़े से पीटकर अंगों को इच्छानुसार चपटा किया गया है। सिर की अपेक्षा बाहें और पैर पतले हैं। इनकी बाहों का बाहरी भाग तेज धार वाला है, जबकि पाँव के अंदर वाला भाग मोटा है। किसी औजार के रूप में इनका प्रयोग किया जाता हो ऐसा ज्ञात नहीं है, पर डीपी अग्रवाल के विचार में शिकार के समय इन्हें चलाकर शिकार को मारा जाता होगा, किंतु अधिक उचित यही लगता है कि ये आज के देव मूर्ति की तरह किसी देवता की प्रतिमा रहे होंगे जिनका पूजन किया जाता होगा, जिसकी पहचान वज्र से की गई है। इसी उपकरण के आधार पर ताम्र निधियों के उपकरणों को सांप्रदायिक माना जाता है। शस्त्र पूजन की पुरातन परंपरा का ज्ञान इससे मिलता है। हाइन गेल्डर्न के अनुसार इन ताम्र निधियों के उपकरणों का प्रयोग केवल उत्तरी भारत में गंगा घाटी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसके बाहर पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान आदि के क्षेत्रों में भी प्रचलित थे। पर डॉक्टर बीबी लाल ने इस मत के खंडन में कहा है कि ताम्र निधियों के उपकरणों की धातु शुद्ध तांबा है, जबकि गेल्डर्न के अनुसार ये उपकरण कांसे के हैं। उन्होंने दूसरा तर्क दिया है कि भारत के बाहर पाए जाने वाले ताम्र उपकरणों में टेकदार कुल्हाड़ी, फोट, मुनरो तलवार और डंडा लगाने के लिए छेदयुक्त बसूले की तरह यहाँ कोई उपकरण नहीं मिला है। और उनका तीसरा तर्क यह है कि मत्स्य भाले, पूर्ण मानव आकृति और श्रृंगदार कुल्हाड़ी भारत की अपनी देन है, ये किसी भी बाहरी संस्कृति में नहीं मिले हैं। अतः ये ताम्र उपकरण वास्तव में उत्तरी भारत के गंगा घाटी की देन होंगे। निर्माणविद, ये उपकरण शुद्ध ताम्र के बने हैं, पर कुछ में एलॉय की थोड़ी मात्रा का मिश्रण हुआ है। स्मित को उनमें से कुछ के परीक्षण के आधार पर बहुत थोड़ी सी मात्रा में टीन एवं कांसा का मिश्रण मिला है। एलॉय का मिश्रण इसलिए अनिवार्य हो गया था कि इसको ढालने तथा मोड़ने के लिए इसका प्रयोग अनिवार्य था। खुले सांचे में कुल्हाड़ियाँ ढाली जाती थीं और बंद सांचे में मत्स्य भाले और तलवार। इनके लिए तांबा झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। मुख्य राग की खानों में से ये प्राप्त किए जाते थे। इसके पीछे कारण है कि इनकी प्राप्ति अधिकांश पूर्वी भारत से हुई है, बहुत थोड़ी सी राजस्थान से। क्योंकि पूर्वी भारत में जब इनकी खाने थी तो हड़प्पा सभ्यता की तरह राजस्थान के खत्री और गणेश्वर की खानों से मंगाने का कोई औचित्य नहीं प्राप्त होता। विस्तार, इस संस्कृति का विस्तार गंगा घाटी तक ही सीमित रहा है। यद्यपि कुछ लोगों ने पश्चिमी भारत से प्राप्त ताम्र उपकरणों को भी इसी संस्कृति से जोड़ने की वकालत की है, पर ऐसा उनके निर्माण कौशल और प्रकारों के आधार पर माना नहीं जा सकता। मक्खन लाल ने इन ताम्र उपकरणों का विस्तार तीन क्षेत्रों में माना है और प्रत्येक की अलग अलग विशेषताओं का संकेत दिया है। पहला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पूर्वी भारत के उपकरण, जिनमें प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार की कुल्हाड़ियाँ ही प्राप्त हुई हैं। ये चौड़ी, दोहरी धारदार, छड़युक्त तथा स्कंधित हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्षेत्र, जहाँ से अधिकांश श्रृंग मोठ वाले तलवार, मुड़े तलवार तथा मत्स्य भाले प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ कुल्हाड़ियाँ चौड़ी और छड़ वाली भी प्राप्त हुई हैं। तीसरा, राजस्थान से केवल चौड़ी और छड़युक्त कुल्हाड़ियाँ ही मिली हैं। निर्माता, यह पुरातत्व की एक जटिल समस्या है, क्योंकि किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर वाद विवाद के बाद भी विद्वान अभी तक निश्चित मत पर नहीं पहुंच सके हैं। इस संबंध में विभिन्न मत निम्न हैं। पहला जो मत है स्मित का है, इनके अनुसार कुछ भी निश्चित रूप से इसके निर्माता के विषय में नहीं कहा जा सकता, यद्यपि इन्होंने इन उपकरणों का दूसरी संस्कृतियों से तुलनात्मक विवरण दिया है। हाइन गेल्डर्न इन उपकरणों की समानता ईरान तथा काकेकस क्षेत्र से करके इनका भारतीय निर्माण वहीं के आधार पर माना है जो आर्यों द्वारा यहाँ पहुँचा था। स्टुअर्ट पिगट मोहटे पहले इस मत से सहमत थे कि आर्य जाति ने अपने स्थानांतरण काल में इन्हें भारत पहुँचाया, क्योंकि युद्ध प्रिय होने से वे इन अस्त्रों को साथ लाए होंगे। पीछे उन्होंने इन्हें आर्यों के पूर्व भारत में फैलने वाले हड़प्पी खाना बदोश लोगों की देन माना, जो अपनी सभ्यता के विनाश होने पर हड़प्पा छोड़कर पूरब चले थे। इसका आधार संचय का कारण अनिश्चितता तथा आर्थिक अस्थिरता माना जाता है। जो अगला मत है, डॉक्टर बीबी लाल ने इनके संचयनों में प्राप्त मृदभांडों को पका, भद्दा, बुरबुरा चढ़ाया गया रंग वाला पात्र तथा कम संख्या में मिलने के आधार पर जो इन्हें विभिन्न स्थानों के उत्खनन से मिला था, यह माना है कि ये आर्यन ही थे। क्योंकि जिन आर्यों के औजार इतने अच्छे थे वे इतने घटिया मितभांड बनाएंगे संभव नहीं है। अतः इन्होंने इसे उन लोगों की कृति बताया है जो गंगा घाटी में आर्यों से पहले बसे थे, जिन्हें आर्यों ने भगाकर अपना अधिकार यहाँ जमाया। आर्यों ने इन्हें निषाद कहा है। तिथि, इस प्रकार यह अवनतिकालीन हड़प्पा तथा आर्य पूर्व की देन माना जा सकता है। इसकी कोई कार्बन तिथि नहीं निकाली गई है, पर ऊपर के आधार पर डॉक्टर धवलेकर ने इसे द्वितीय सहस्राब्दी के मध्य को माना है। इन्होंने 1700 से 1400 ईसा पूर्व के बीच इनकी तिथि का आकलन किया है। उद्भव, यह पता करना टेढ़ी समस्या है कि ताम्र उपकरणों का उद्भव स्थान कहाँ था। डॉक्टर दासगुप्ता ने माना है कि यह बिहार था, जहाँ सरल प्रकार के उपकरण पाए गए हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की कुल्हाड़ियाँ और छल्ले। यह बात तो सत्य है कि ताम्रमल्ल बिहार में बहुत मिले हैं। इन उपकरणों का प्रयोग आर्यों के विरुद्ध किया गया होगा, जब आर्य पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हो रहे होते। यह अतः ये आर्यों के प्रतिद्वंद्वी सभ्यता द्वारा आविष्कृत किया गया होगा। आर्यों के विरुद्ध प्रयोग के लिए संभव है बिहार की इस धातु से पश्चिम में इस प्रकार के उपकरण तैयार किए गए होंगे। ताम्र निधियों में जो उपकरण प्राप्त हुए थे वह मुख्य रूप से कुल्हाड़ियाँ, छल्ले, मत्स्य भाले, दोहरी कुल्हाड़ी, श्रृंगदार मुठ की तलवार, पूर्ण मानवाकृति आदि हैं।